ये भगवान का इनकम बढ़ाओ, 4,000 धर्म से 10,000 करो, अकेला बैठा है, परिवार नहीं लाया अभी तक, यहाँ आलो नहीं है फैमिली ना कम इनकम वाले की, इसकी गोविंद की इनकम बढ़ाओ भाई। कृष्ण अकेला का मुझे कह रहा है मेरे परिवार का क्या होगा, यहाँ लाए नहीं। चलो मुझे इनकम बढ़ाए बाबा। हाँ तो मेरे अच्छा अनपैकिंग भी करे, किचन में पैकिंग दिखे बरबर, तो पैकिंग करेगी ना अंदर, राजा रानी किचन की मालिक है ना। ही इज नेवर अलोन, कृष्ण इज नेवर अलोन, ही इज ऑलवेज विद हिज डिवोटीज। राजा रानी हो, गाय हो, मोर हो, बंदर हो, कुछ ना होना चाहिए साथ में, वो भगत के बगैर रहेगा नहीं, चला जाएगा, भगत होना चाहिए। हरे कृष्णा, इनकम बड़ा हो। मैं महाराष्ट्र में एक जगह गया तो बोले विठल बाबा अकेला खड़ा है, बोला क्यों, बोला ये सब बेचारे सैनिक थे, वो तो अभी पापा परिवार साथ तो नहीं ले जा सकते, सैनिक कहाँ ले जाएंगे बेचारे परिवार, वो तो महाराष्ट्र के सब तो सैनिक है, लेकिन यहाँ तो इनकम बढ़ाने से आप रख सकते हो परिवार, है बढ़ाओ इसका धन धर्म बढ़ाओ इनके। इनके आप एक बढ़ाओगे ये आपके लाख बढ़ाएगा, फार्मूला बनाते जाओ। अब पार्सल चाहिए परमेश्वर को। अरे कृष्णा, वर्स व्हाट वी हैव सिलेक्टेड टुडे, जस्ट लिसन टू दिस। पिबन्ति ये भागवतात्मनः सताम् कथामृतं शरवणपूतेषु संभृतं पुनन्ति ते विश्या विदुषिताशयं व्रजन्ति तच्चारणा सरोरुहान्तिकम्। Those who drink through oral reception, fully filled with the nectarian message of Lord Krishna, the beloved of the devotees, purify the polluted aim of life known as material enjoyment and thus go back to Godhead, to the lotus feet of Him, the personality of the Godhead. Jo log karan rupi patron kanun se भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा भागवत को भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और भगवान के चरण कमलों के निकट भगवत धाम को वापस जाते हैं। ये पुस्तक परमेश्वर का परमेश्वर को दे दी। हाउ ही कैन गो विदाउट भागवतम। हरे कृष्णा, क्या करेंगे, कुछ कथा करेंगे कि चलेंगे? हरे कृष्णा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। नंद गोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
तो भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से नहीं मांगना चाहिए। ये शरणागति का पहला स्तर है। शरणागति का पहला स्तर है, अर्जुन की शरणागति का ये पहला स्तर है। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले द्वारका में गया था दुर्योधन भी और कृष्ण भी, कृष्ण के पास गया था अर्जुन भी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल में थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठे थे, लगता है कि आराम में है। दुर्योधन अंदर पहुंचा और दुर्योधन जाके सिरहाने बैठ गया सोफे के ऊपर। अर्जुन थोड़ी देर में पहुंचा, अर्जुन ने भगवान को आराम में देखा, चरणों के पास बैठ गया। भक्त आए और भगवान आंख नहीं खोले तो भगवान का भक्त कैसे भक्ति करेगा? भगवान इसकी प्रतीक्षा करेगा कि भक्त आएगा कब, तो आंख खोलो। वो किसी और को देखना नहीं चाहता है और भक्त भगवान के अलावा और किसी को देखना नहीं चाहता है। वो आंखें इसलिए बंद करके बैठेगा, दुर्योधन का मुंह देखूंगा तो अर्जुन का कैसे भला होगा। हरे कृष्णा, कौन ले जा रहा है आपको? नहीं, जाने वाला है तो निकल जाओ, भागो, जिनको जाना है। अब सब जिसको जाना है जा सकते हो, मैं अभी नहीं जाऊंगा, नहीं यहां से बैठा हूं मैं यहां से। नहीं, आपको भी जाना है तो जाओ, नहीं आप भी जा सकते हो। हाँ नहीं, मैं यहां से बाद में आऊंगा आराम से। ये अब तो मैं कथा करने के बाद प्रसाद खा के सो जाऊंगा। आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, चाहो जाओ, भागो भागो। बाबा काम करना है, हमने एक भगवान की नौकरी ली, आपने 100 नौकरियां हैं, जाके करो। हमने एक नौकरी ली, हमें कोई चिंता है नहीं। भागो भागो, आपका सेवा अपनी है, हमारी सेवा अपनी है, भागो, जाओ जाओ। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनोहर मोर मनोहर, हरे कृष्ण बोलो, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन के आते ही भगवान ने, पार्थ आप कैसे? तो दुर्योधन बोला, मैं पहले आया हूं। तो भगवान ने थोड़ा ऐसे टेढ़ी आंख से देखा, अच्छा आप भी पधारे हैं युवराज। भगवान जिसको टेढ़ी आंख से देखता है उसका तो उसी वक्त काम पूरा हो जाता है। युद्ध तो बाद में होना था, उससे पहले फैसला हो गया युद्ध का के ना होना क्या है। टेढ़ी आंख से भगवान का देखना, नहीं नहीं हम आपसे सहायता लेने के लिए आए हैं। अच्छा क्यों? बोला युद्ध होने वाला है। हरे कृष्ण बेटी, आप कैसे आए अर्जुन? बोला आए तो हम भी सहायता लेने हैं आपसे। अच्छा दोनों को सहायता चाहिए, तो बस ठीक है, हमने निर्णय कर लिया। हमारी चतुरंगनी सेना एक तरफ है, कृतवर्मा आपको देते हैं, कृतवर्मा सेनापति है, और हाथी रथ घोड़े और प्यादल ये चार प्रकार की चारंगनी सेना आपको देते हैं। एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ मैं अकेला हूं, और मैं कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं। अब दोनों में से आप एक कोई मेरे को चुन ले और एक मेरी सेना को चुन ले। लेकिन एक बात है, देखो छोटा है अर्जुन, छोटा भी है उम्र में, और पहले मैंने देखा भी अर्जुन को है, पहले चुनने का मौका अर्जुन को दिया जाएगा। अरे दुर्योधन ऐसे दिल को पकड़ा कि अब लड़ाई हो रही है, सेना ले लेगा तो मैं इस ग्वाले को ले जाके क्या करूंगा उधर। अर्जुन बड़ा दुखी हो गया। लेकिन अच्छा बेटी, हरे कृष्ण, वैशाली और उमेश, हरे कृष्ण, अर्जुन ने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, कब श्री कृष्ण मुझे आप जाइए। दुर्योधन ने लंबा सांस लिया, बहुत अच्छा, बस आप सेना भेज दीजिए, धन्यवाद। ने बोला बस मेरा काम हो गया। अर्जुन से कृष्ण ने पूछा, आप लड़ाई के लिए सहायता लेने आए थे ना, तो आपको सेना लेनी चाहिए, आपने मुझको क्यों ले लिया? बोला भगवान लड़ने को तो मैं अकेला काफी हूं, लेकिन आप सिर्फ मेरे आगे बैठना, इतना ही मेरे को जरूरत है। आप मेरे आगे हैं तो मेरी सारी रक्षा अपने आप हो जाएगी, तो मुझे तकलीफ काहे के लिए? आपको पीछे छोड़ के आगे जाने का क्या फायदा है? आप केवल मेरे आगे बैठ जाइए ताकि मैं आपको देखता रहूंगा, कि आप मेरे आगे हैं तो मेरी चिंता दूर है। बोला आगे का क्या मतलब? बोला सारथी बन जाना। सारथी आगे बैठता है ना, ड्राइवर आगे बैठेगा ना। बोला मैं पीछे बैठूंगा। भगवान ने कहा अच्छा भाई, तुमने काम तो मेरे को अच्छा दिया है कि मेरे को बोला तू गाय, चलो भाई आपकी गाड़ी चलाएंगे। अब भवसागर में गाड़ी आपकी आपसे चलेगी नहीं, इसलिए भगवान को गाड़ी चलाने के लिए आप दे दीजिए, रख तो अच्छा है। बोलते हैं ना सब लोग, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ। ये डोरी कौन सी है, कभी देखा है? कौन सी वाली डोरी देना चाहते हैं? ये देखिए भगवान यहाँ खड़े हैं। भगवत गीता की प्रति लाओ बेटा, भगवत गीता की कॉपी दिखाओ। इसमें देखो एक डोरी भगवान के हाथ में है, एक डोरी पकड़ी हुई है ना। इंद्रिया रूपी घोड़े और मन रूपी लगाम, ये मन रूपी लगाम भगवान के हाथ में जिसने दिया उसको बोलते मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मैं दीन हूं, मैं छोटा हूं, मैं पापी हूं, लेकिन बस अब मेरी डोरी आपके हाथ में, मतलब ये मन जो मेरे को संसार में पाप करा के दुखी कर रहा है, इसको आप ले लीजिए। मन भगवान के हाथ में देना, डोरी मेरी डोरी तेरे हाथ का अर्थ है। तो जो अपना मन भगवान को देता है तो सारे संसार के दुख से दूर हो जाता है। भव सागर को पार करना, उसके लिए भगवान को अपना मन देना है। इसलिए एक ही चीज संसार में हमारे पास है जो हमको बहुत दुखी करती है, वो है हमारा मन। मन चंचल है, पल मन परमाथी है, मल मन बलवद है, मन दृढ़म है। चार मन के विशेषण अर्जुन भगवद गीता में देता है। चंचलम ही मन कृष्ण परमाथी बलवद दृढ़म, तस्या अहम न निग्रम मन्ये वायु एव दुष्करम। अर्जुन मन अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण मन बहुत चंचल है। चंचल है का मतलब है एक जगह रुकता ही नहीं है। हम आप में टिकाने का प्रयास करें लेकिन उससे पहले ये 10 जगह भाग जाता है। बोला बच्चे भी तो आपके घर में चंचल होते हैं, उनको कैसे संभालते हो? मन को भी थोड़ा संभालना प्रयास करके। असल में गृहस्थी के बच्चे होते हैं ना, उसको पता होता है कि कितने बच्चा परेशान करते हैं, लेकिन उसको भी संभालते हैं ना। तो इससे हमको एक शिक्षा मिलती है, मन को भी ऐसे संभालना जैसे बच्चों को संभालना है। आपके बच्चे घर में ज्यादा चिल्लाते हैं तो क्या करते हो? पहले प्रेम से बेटा मत करो, पहले प्रेम से बेटा मत करो, तो टॉफी खा ले बेटा, तो चॉकलेट ले ले, लड्डू खा ले, ये भी नहीं, ऐसे भी नहीं मानता है। बहुत और उधम मचा था, फिर एक थप्पड़ मारते हैं प्रेम से, चुप ऐसे करते बच्चों को ऐसे समझ। ये आपके घर की प्रक्रिया ऐसी है ना, तो मन को भी पहले कहो थोड़ी देर में भगवान के चरणों में बैठा हूं भजन करने के लिए, तुम चुप हो जाओ, तू लड्डू खा ले, बैठ के मन के लड्डू खा ले, तेरे को जो करना है। तो नहीं मैं आपको इधर नहीं बैठने दूंगा, तब तक थप्पड़ मारने चाहिए, चुप। ये बच्चे घर में जैसे बच्चों को डील करते हैं ऐसे मन से डील करना चाहिए, क्योंकि मन भी चंचल है। अर्जुन कह रहा है चंचल केवल चमचल होता बच्चों की तरह से समझा लेते। ये तो परमाथी है, परमाथी का मतलब है इतना तेजी से भागता है जैसे जैसे मिक्सी भागती है ना। मिक्सी देखिए माल के अंदर डालते तो पता है कौन सी चीज कहाँ है। ये तेज पंखा चलता है तो ये गोल लगता है, ये मन गोल मोल ऐसा घूमता है कि हम इसको पकड़ने का प्रयास करें तब तक तो यहां से चला जाएगा बड़ौदा और बंबई, वहां से लोके यहां ले लौटा के यहां ले आए तो तब तक पता लगा कि वो पता नहीं कहीं और चला गया। तो हाथ में नहीं आता है तो पकड़े कैसे? तो बोले तुम अपने हाथ लंबे कर लो। बोला हमारे हाथ लंबे नहीं है। बोले तो मेरे हाथ में हाथ मिला लो, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। तुम्हारे हाथ लंबे नहीं है ना, भगवान कहते मेरे हाथ तो लंबे हैं ना, मैं तो सब जगह पहुंच सकता हूं ना। बोला वो तो ठीक है लेकिन ये बहुत बलवान है। बोले तुम अपना बल बढ़ा लो। बोला ये बहुत दृढ़म का अर्थ है, ये बहुत जिद्दी है, मन जिद करता है, मन बहुत जिद्दी है, किसी बात पे अटक जाता है तो हमको ये तो मन ऐसा जिद्दी है जैसे जैसे केकई जाके कूप भवन में सो गई और दशरथ कैसे इतना जिद किया कि राम को वनवास दिला के ही छोड़ा, इसको बोलते जिद्दी। जो आदमी जिद पे आए, किसके जिद के लिए कहा है कि तीन जिद से हमेशा सावधान रहना, बाल हट, योग हट, त्रिया हट और राज हट। ये चार हट ऐसे हैं जिसको भगवान भी परेशान हो जाता है इनके हट से, बहुत खतरनाक हट है ये। तो मन कैसा है? बड़ा हठीला है। ये बात कही भगवान ने, अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि कहते तो ठीक हो, असंक्षम महाबाहो, कोई संशय नहीं है, बात आपकी ठीक है, मनोदुन निग्रम अचलम, मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। अब अर्जुन ने कहा बात तो मेरी सुन रहे हैं, अच्छी बात है। ये भगवान शिक्षा देते हैं कि माता पिता को, गुरुजनों को, जब बच्चों को कोई बात कहते हैं वो कहते हैं हमसे नहीं हो सकता है, तो उनको डांटना नहीं चाहिए पहले से, क्यों नहीं हो सकता है, काम नहीं करोगे थप्पड़ मारूंगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहना चाहिए बेटा बहुत मुश्किल है, बाकी इतना आसान नहीं है करने। तो बच्चा कहेगा मेरी बात को समझ रहे हैं, तो आप कहोगे उसको सुनेगा, लेकिन पहले ही अगर आपने कहेगा तुम कैसे नहीं करोगे, तो सुनने वाला दरवाजा बंद कर देगा, आप कुछ भी कहो उसके कान में जाएगा ही नहीं, फिर वो अपना सुनने वाला दिमाग बंद कर देगा। इसलिए उसको कहो नहीं बेटा तुम ठीक कर रहे हो, बात तुम्हारी सच है, इतना आसान काम नहीं है ये। और फिर कहो लेकिन बेटा एक रास्ता बताता हूं इसको करने का, तब बोलेगा हाँ ये भी हो सकता है कि इतना बड़ा काम मुझसे, ये मेरे से काम हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, फिर वो खुश हो जाएगा अंदर में। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि एक 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 अध्यापक को, एक गुरु को, एक पिता को, एक माता को कैसे डील करना चाहिए, कैसे बच्चा जब कोई समस्या लेकर आए तो उससे कैसे बात करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, उसकी बात का समर्थन करना चाहिए। हाँ हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो हवा को रोकना कितना मुश्किल है, उससे भी मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता मैं बताता हूं आपको, बताइए बताइए। फिर तो कहेगा बताइए बाबा कौन सा रास्ता है, इतना बड़ा काम करने के लिए कोई रास्ता है तो जरा बताए, फिर उसका उत्साह बढ़ जाएगा। सब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये मनोविज्ञान है। तब भगवान ने कहा अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्ये न सगृह्यते। बेटा एक अभ्यास करोगे और एक वैराग करोगे तो ये मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। तो अभ्यास क्या क्या अभ्यास करूं, भगवान ने मानो अगर कहा। तो अर्जुन ने पूछा कि अभ्यास क्या करूं, ये एक दो तीन दिन से एक कविता याद आती रहती है, कौन कहां गई बोली थी, करत करत अभ्यास जड़ मति हो सुजान, करत करत अभ्यास जड़ मति हो सुजान, रसड़ी आवत जावत सिला पड़े निशान। कुएं से पानी निकालते ना पुराने जमाने में, तो रस्सी जो होती थी बहुत नरम होती थी, और पानी से भीगने के बाद वो और नरम हो जाती थी, और जो पत्थर है जिसके ऊपर से वो जो 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 बना हुआ होता था खींचने के लिए पानी, वो तो लकड़ी का और पत्थर का होता है, और नीचे पत्थर नीचे रखे होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। वो रस्सी अंदर जाती है आती है पानी निकालते हो, आते जाते ही अभ्यास से वो पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, सिल्ला पड़े निशान, सिल पड़े पत्थर के ऊपर निशान हो जाता है। तो पत्थर जैसा दिल भी होगा, तुम्हारा हठीला और कठोर मन भी होगा, लेकिन तुम अभ्यास करते रहोगे तो इसके ऊपर भी आस्ते आस्ते निशान हो जाएगा। नरम रस्सी सख्त पत्थर के ऊपर निशान कर देती है। तो अभ्यास करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको बच्चा बच्चे लोग आप स्कूल में आपको पढ़ाते हैं क्या कहते हैं इसको, स्टेंजा ने क्या टेबल्स पढ़ाते हैं, जिसको पहले हम कहते थे पहाड़े, सिंधी में खोड़ा चेवा खोड़ा। कितनी बार बेटा आपने ये याद करना हो 13 का आपको टेबल, तो कितनी बार आपने जिंदगी में उसको प्रयास किया हुआ याद करने का, 10 टाइम याद हो जाएगा, जब तक याद नहीं होता है तो 100 बार से ऊपर इसको हमने कई बार याद पर, और फिर याद कैसा हो जाता है अभी 13 7 सा ये हो गया कच्चा। पुराने जमाने में सोए हुए आदमी को कहते हैं ना कि 9 13 72 सोए सोए बोलेगा, नींद में बोल देगा उसको, पूछे इतना अभ्यास कराते थे मास्टर पुराने जमाने में कि कितना मुश्किल है 13 का पहाड़ा, लेकिन आधी रात को उसको पूछते तो हमें मालूम है, जब हम स्टूडेंट थे ये मास्टर पूछता पहाड़ा पूछता था और 1 सेकंड में नहीं आया तो दूसरे को पूछता था, और उसको आ गया तो हमको थप्पड़ मारता था वो लड़का। हम ऐसे याद किए कभी हमको वो भूला नहीं आज तक। ये इसको बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास ऐसा कि अचानक ऐसे ऐसा अभ्यास भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए कि चलते चलते ऐसे पांव टेढ़े हो जाए निकलना चाहिए अचानक। ये इसको बोलते हैं अभ्यास, कि जब कोई जहां जरूरत पड़ती है वह एकदम अभ्यास होगा तब निकलेगा ना, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी, और बहुत अभ्यास करने का मतलब है भगवान के नाम के सुमरण और जप का अभ्यास रोज करने की आदत डालेंगे। बोला वैराग क्या है, बोला जो चीजें भगवान के भजन में बाधा डालती हैं वो आपको अच्छी भी लगती हैं तो उनको दूर रख दो। जैसे बीमारी है शुगर की, अच्छा लगता है हलवा लेकिन उससे दूर रहो नहीं तो तेरा जीवन चला जाएगा। साधारण जीवन में बीमारी हो गई है तो फिर आपको उस चीज को चाहते हो फिर भी छोड़नी पड़ेगी, इसको वैराग कहते हैं। चाहते हुए भी उसको छोड़नी पड़ेगी, खाओगे तो आपका जीवन चला जाएगा, जीवन की रिस्क है। तो ऐसे आत्मा के इस संसार में दोबारा पतन का कारण जो चीजें हैं उनको ऐसे छोड़ना चाहिए जैसे शुगर वाला पेशेंट मिठाई को छोड़ता है। अच्छी तो लगती है लेकिन खाएगा नहीं, खाएगा तो उसको मालूम है मैं बहुत पीड़ा में हो जाऊंगा, बहुत कष्ट आ जाएगा, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा और मैं पालन पोषण बच्चों का नहीं कर सकता हूं, मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अच्छा लगती है तली हुई चीजें लेकिन नहीं मैं खाऊंगा तो मेरे को डॉक्टर ने मना किया है, दिल में तकलीफ है, नहीं खानी चाहिए, तो लोग छोड़ते हैं ना। दुनिया में भी तो ये लोगों को आपने देखा है ना, सब चीजें छोड़ी हुई है, क्यों जीना चाहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक रास्ते में चलने के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए जो ऐसे कर्म हैं जो आपको अच्छे लगते हैं लेकिन आपके आत्मा के पतन का कारण बनते हैं, जन्म मृत्यु में फिर गर्भगल में डालना चाहते हैं, उनको उनसे वैराग कर लो। और सबसे पहला नशा है जिससे वैराग करना चाहिए, नहीं तो भगवान के भजन में आधा घंटा बैठने भी नहीं देगा। सिगरेट पीने वाला एक आधा घंटा एक जगह बैठ नहीं सकता है, उसको बाहर जाके सिगरेट पीनी पड़ेगी। ये चाय चूचड़ी घर में जो आ गई है ना, ये भी नींद से उठेगा नहीं, उससे पहले बेड टी चाहिए। अरे उठ के पहले भगवान का नाम लेना है? बोला नहीं, पहले टी पीना है। तो ये एक छोटी सी आदत पड़ जाने से हम कोई काम नहीं कर सकते। उठ के जल्दी काम करना होगा ना, नहीं चाय नहीं मिली है कैसे काम करेंगे। तो एक छोटा सा हमारी जो छोटी सी एक आदत है उसको हम छोड़ नहीं सकते। किसी ने बोला इतना तो छोड़ नहीं सकता है तो भगवान को कैसे पा सकता है? अरे भगवान को पाने के लिए तो एक हमारा मित्र था, उसकी भाभी का डेथ हो गया, वो हरिद्वार गया। तो महाराज ने कहा आपको कुछ छोड़ना चाहिए। और महाराज ऐसे कोई संत ऐसा अच्छा था, बोला आप चाय छोड़ दो। बोला महाराज चाय नहीं छूट सकती है। उसने बोला तुम्हारी भाभी तुमको बहुत प्रिय थी? बोला हाँ। बोला अब चली गई, तुम्हारी जिंदगी चलेगी ना? बोला जिंदगी तो चलानी पड़ेगी कैसे भी, चली तो चली गई है। बोला इतना तुम्हारा सगान संबंधी चला गया, उसके बाद तुम जी सकते हो? चाय के कप के बगैर नहीं जी सकते हो क्या? उसने बोला वो दिन आज का दिन, मैंने कभी दोबारा उसको हाथ नहीं लगाया। तो जब हमको ये समझ में आ जाता है कि ये हमारा बहुत बड़ा अहित वाली चीज है, हमारे आत्मा के पतन के कारण ये नशे हैं बहुत सारे, और फिर शराब का कहना ही क्या, वो तो बोतल भी नाचने लगती है तो आदमी का क्या हाल होगा। जिसको पीने के बाद उसको अपने पराये का पता नहीं लगे, अपना जो नुकसान, पैसा किसका है? सिगरेट पीता है, पैसा किसका है? अपना। शराब पीता है, पैसा कितना? अपना। और नुकसान किसका, नुकसान किसका कर रहा है? अपना। बीमार स्वयं हो रहा है और बच्चों का पेट काट रहा है ना। जो सुख सुविधा बच्चों को देनी चाहिए वो पैसा उसमें जा रहा है ना। तो बुद्धि जिस दिन आ जाएगी तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा के पतन में। और फिर दया नहीं होगी तो धर्म के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है, और पशु हत्या से दया खत्म हो जाती है। तो अच्छा तो लगता है, बहुत टेस्ट तो हमारे जबान को और दांत को वो खाने में तो मांस की लगती है, लेकिन क्योंकि आत्मा का पतन होने के लिए खतरा है इसमें, इसलिए को नहीं खाना है, छोड़ देंगे हम। लाल बत्ती के ऊपर गाड़ी खड़ी करना गवर्नमेंट का उद्देश्य आपका टाइम खराब करना नहीं है, आपको एक्सीडेंट से बचाना है। तो ये रेड मीट रेड बत्ती है, इसको छोड़ोगे नहीं तो एक्सीडेंट जिंदगी में हो जाएगा। और एक्सीडेंट क्या होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है ना, और ये मृत्यु के समय एक्सीडेंट होगा तो गधे की शक्ल मिलेगी या बकरी की शक्ल मिलेगी या घोड़े की शक्ल मिलेगी, डेंट पेंट भी नहीं हो पाएगा। समझना चाहिए ठीक तरह से कि ये सब चीजें हमको दादा आश्चर्य लगता है। घर में गुरु ग्रंथ लाते हैं हमारे सज्जन पुरुष, शादी में घर में 3 दिन गुरु होता है तो घर में कुछ मांस मच्छी नहीं बनेगा। 3 दिन के बाद पंडित को बोलते हैं गुरु जी को जल्दी ले जाओ। भाई गुरु, अभी गुरु बैठा रहे ना घर? नहीं नहीं, 3 दिन हो गए खाए को, इसको ले जाओ, गुरु को निकालो, जल्दी करो। तो कौन सा तुम्हारा गुरु का तुमने आदर किया? गुरु घर में आया है तो 3 दिन तुम सुधर गए और फिर गुरु को जल्दी निकालो ताकि हम खराब हो जाएं, ये कोई गुरु का आदर कर रहे हो? गुरु की मंजी के नीचे प्रसाद सिर्फ मीठा हलवे का होता है, और हम तो पुराने लोगों को जानते हैं लहसुन प्याज वाला प्रसाद भी गुरु की मंजी के नीचे भोग नहीं लगता था, कभी भी नहीं लगता है। जब गुरु नहीं खाता है तो तुम क्यों खाते हो? तो गुरु के तो सिख नहीं हुए ना, तो अपनी जबान के सिख हो ना, अपने मन के चेले हो ना, गुरु के चेले तो नहीं हुए ना। गुरु ने कहा क्या कहा? शराब माख मांस शराब मछली शराबा सुरापा जो पिए व्रत क्या तीर्थ व्रत सब रसातल जाए। तो ये सब पीने वाले के तीर्थ व्रत भी रसातल जाते हैं, कोई पुण्य कमी सब पानी में जाते हैं, लेकिन सब काम तो कर रहे हो। तो फिर ये तो हुआ गुरु को यूज करना। गुरु का शिष्य वो जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। और ऐसे भोग विलास के लिए मन में विचार भी आए तो भगवान ने सुरक्षित आपके लिए विवाह को संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब अपने संबंधों को पवित्र रखना। तो अपवित्र विचार मन में आए तो समझ लो ये आत्मघाती है, जिसका वैराग करना बहुत जरूरी है। और वैराग का दूसरा अर्थ यह है कि विशेष भगवान के नाम स्मरण से और भगवान की कथा स्मरण में अगर राग हो जाएगा तो ये चीजें आपको छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये आपको अपने आप छोड़ के चली जाएंगी। तो वैराग का एक अर्थ ये लेना चाहिए, विशेष भगवान में राग हो जाएगा तो पाप कर्मों से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। तो भगवान ने कहा ये मन तुम्हारा नहीं वश में आता है तो मैं आपको दो रास्ते बताता, अभ्यासेण तो कौन थे वैरागेण सगृह्यते, इसको ग्रहण किया जा सकता है, मन को एकाग्र किया जा सकता है अभ्यास और वैराग के द्वारा। तो अभ्यास का अर्थ है बार बार भगवान के नाम का उच्चारण करना, जप करना। और ये पहली पौड़ी गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में गुरुदेव का आदेश, गुरु प्रसाद। भगवान कौन है, भगवान कैसे मिलेगा, बोला गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलेगा। बोला फिर क्या करा, बोला फिर जप, फिर उस भगवान को बैठ के जपो। जप का मतलब है बार बार उसी चीज को दोहराना, जप की परिभाषा है रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो जप करो बैठ के, ये अभ्यास है। रोज भगवान का दर्शन करना, कथा सुनना, जप करना, कीर्तन करना, ये अभ्यास है। और जब ये करने लगोगे भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो जो भगवान की भक्ति में रुकावट डालने वाली चीजें हैं उनसे अपने आप दिल उठ जाएगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। दोनों साथ चीजें साथ नहीं चल सकती हैं। आप हलवा भी खाओ और शुगर की दवाई भी खाते रहो। एक मरीज था अस्पताल में दाखिल डायबिटीज का, हमने खुद देखा उसको, तो हम अस्पताल में ही थे। रोज सुई लगाए, रोज रात को देखे शुगर ठीक है, सुबह देखे फिर शुगर बढ़ गई, इतनी दवा देते हैं, बात क्या है। हमने वार्ड के नर्स को, वार्ड बॉय को बोला जरा इसका चकास करो, करता क्या है। दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन बताया कि सुबह सुबह 6 बजे उठ के बाहर जाता है और जाके थोड़ी सी माए की मिठाई लेता है 250 ग्राम, खा के फिर आके सो जाता है। शुगर करते हैं तो शुगर बढ़ी हुई है तो पता लग गया। तो ये है कि दवाई लो और फिर साथ में शुगर खाते रहो, तो इसको कहते हैं कुंजर स्नान। कुंजर स्नान का मतलब ये है, हाथी जाएगा नदी के अंदर, बहुत नहा के साफ हो जाएगा और बाहर निकलती एक दिन मिट्टी में लौट के सारी मिट्टी अपने ऊपर डाल देगा। तो भगवान का कथा करके कीर्तन करके बाहर निकलते फिर वही पाप कर्म करें तो फायदा क्या हुआ, तो कुंजर स्नान हो गया ना। एक दफा अगर पवित्र हो गया भाई, एक बार बायपास की ऑपरेशन करा दे तो अब कम से कम दोबारा तो उनके अंदर गंध मत भरो ना। तो गुरु के पास जाने का मतलब है बाईपास की ऑपरेशन कराने। अब तो दिल बदल गया, बाईपास के मतलब दिल बदल गया आपका, पहले दिल आपका संसार में थे, अब दिल भगवान का, गुरु का हो गया, भगवान के चरणों में लग गया। अब तो उसके अंदर दोबारा कचरा मत भरो ना नलियों में। अब तो आ गया मानू ना डॉक्टर की, नहीं तो फिर तो अगली बार तो दिल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए भगवान की शिक्षा उनको थोड़ा सा कष्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं तपस्या का रास्ता है ये। लेकिन इंसान तपस्या नहीं करेगा तो गधा करेगा। तपस्या इंसान के लिए है, कर सकता है, इसलिए भगवान ने लिखा है। फिर भी सब नहीं करेंगे क्योंकि असुर भी संसार में पैदा हुए हैं। दिवौ सर्गौ इमे लोकत, दो प्रकार की उत्पत्ति है, देव असुर एवच, देवता भी है असुर भी है। भले मानस मान लेंगे लेकिन असुर नहीं मानेंगे। तो जो देवता बनना चाहता है उसको मानना चाहिए, जो असुर रहना चाहता है रहे, कोई मना नहीं है। लेकिन असुर जूनी निमद्धना असुरी मता, अगर असुर रहोगे तो बंधन में सदा बंधे रहोगे। देवी संपदा विमोक्षाय, और देवी रास्ते पे आओगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब क्या फैसला करना है आप कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बाबू आपका भी बुलावा आया, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।